ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय। भगवान बोले, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मयोग की खास सार बात बताता हूँ। जो मनुष्य कर्म फल का, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है? संकल्पों के त्याग की। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना, अर्थात अपने मन की छोड़े बिना, मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। उसी योगारूढ़ पुरुष की शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। उस योगारूढ़ के लक्षण क्या है? जिसकी न पदार्थों में और न कर्मों में आसक्ति है तथा न अपना कोई संकल्प है, वह योगारूढ़ है। मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है? जिसने अपने आप से अपने पर विजय कर ली, वह अपना मित्र है, और जिसने अपने पर विजय नहीं की, वह अपना शत्रु है। अपने आप का मित्र होने से क्या होगा? वह प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता में और क्रियमाण कर्मों की सफलता और विफलता में तथा परकृत मान और अपमान में प्रसन्न रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के क्या लक्षण है? भगवान, उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। उसका इंद्रियों पर अधिकार रहता है। वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। पदार्थों में उसकी संबुद्धि रहती है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु और पापी व्यक्तियों में भी उसकी संबुद्धि रहती है। ऐसा संबुद्धि वाला विशेष है, सर्वश्रेष्ठ है। वह संबुद्धि केवल योग से ही होती है या अन्य किसी दूसरे साधन से भी होती है? वह संबुद्धि ध्यान योग से भी होती है, इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। ध्यान योगी परिग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर एकांत में अकेला रहकर अपने मन को परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी क्या है? शुद्ध पवित्र स्थान पर योगी अपना आसन न अति ऊंचा और न अति नीचा रखे। वह आसन कुश मृग चर्म और पवित्र वस्त्र से युक्त हो। ऐसा आसन बिछाकर क्या करे? उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। उस आसन पर कैसे बैठे? शरीर, ग्रीवा और मस्तक को एक सूत में अतल करके इधर उधर न देखकर केवल नासिका के अग्रभाग को देखते हुए बैठ जाए। ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए? भय रहित प्रशांत अंतःकरण वाला योगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ मन को संसार से हटाकर मेरे में लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। इसका फल क्या होगा? इस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मेरे में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति हो जाती है। पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सबका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता? अत्यंत खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का, तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर योग किसका सिद्ध होता है? जिसका आहार विहार यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसके द्वारा दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध कब होता है? जिस काल में संयत किया हुआ मन अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात जब अपने लिए किसी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के उस विनियत चित्त की क्या अवस्था होती है? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं, ऐसे ही योगी के स्थिर चित्त की अवस्था हो जाती है। चित्त की ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है। दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध कब होता है? जिस काल में संयत किया हुआ मन अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात जब अपने लिए किसी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के उस विनियत चित्त की क्या अवस्था होती है? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं, ऐसे ही योगी के स्थिर चित्त की अवस्था हो जाती है। चित्त की ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है। तो योगी अपने आप को अपने आप में देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसे योगी को क्या मिलता है? सात्विक राजस और तामस सुख से विलक्षण आत्यंत सुख मिलता है, फिर वह अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। वह किस कारण से विचलित नहीं होता? वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी नहीं रहती और दुख वहाँ पहुँचता ही नहीं, इसलिए विचलित नहीं होता। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से प्राप्त करना चाहिए। अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग अर्थात साध्य रूप समता की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है? हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को वश में करके धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। अगर चिंतन हो जाए तो अभ्यास करे, अर्थात जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ से हटाकर परमात्मा में ही लगावे। ऐसे करने से क्या होगा? रजोगुण वृत्ति से रहित प्रशांत मन वाले दोष रहित ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या होगा? उस पाप रहित योगी को सुख पूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ अर्थात 28वें श्लोक तक आपने तीनों प्रकार के ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला संसार को किस दृष्टि से देखता है? वह संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को और संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। जो आपके सगुण स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? वह सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे में देखता है, इसलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। आप और वह योगी दोनों आपस में अदृश्य क्यों नहीं होते? वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसलिए वह नित्य निरंतर मेरे में ही रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो निर्गुण निराकार का ध्यान करता है वह इस संसार को कैसे देखता है? जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर के अवयवों में तथा उनके सुख दुख में अपने को एक रूप देखता है, ऐसे ही वह अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख को अथवा दुख को भी समान देखता है, इसलिए वह योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, अभी तक आपने समता की प्राप्ति का साधन जो ध्यान योग है उसका वर्णन किया, पर मैं तो मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना तो मैं वायु को निग्रह करने की तरह कठिन मानता हूँ। भगवान बोले, बहुत ठीक बात है, सच्ची बात है, मन तो ऐसा ही है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसका निग्रह किया जाता है। फिर भी भैया, इसमें एक बात और है। वास्तव में ध्यान योग की प्राप्ति में मन की चंचलता कारण नहीं, किंतु मन और इंद्रियों का असंयम अर्थात वश में न होना ही कारण है। इसलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसके द्वारा ध्यान योग को प्राप्त करना कठिन है, और जिसका मन और इंद्रियां वश में है उसके द्वारा ध्यान योग प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन बोले, महाराज, जिस शिथिल प्रयत्न वाले साधक की अंतकाल में साधन में स्थिति नहीं रही, ऐसे साधक की क्या गति होती है? क्या वह संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मोहित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे भगवान, ये मेरा संशय अर्थात संदेह है। मेरे इस संशय को आप ही मिटा सकते हैं, इसको आपके सिवा दूसरा कोई मिटा ही नहीं सकता। भगवान बोले, भैया, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही पतन होता है। प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति में नहीं जाता। वह दुर्गति में नहीं जाता तो कहाँ जाता है? जिस साधक की कुछ सांसारिक सुख की इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाता है और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर मृत्यु लोक में शुद्ध सीमानों के घर में जन्म लेता है, तथा जिसकी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह सीधे अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर तत्व की योगियों के कुल में जन्म लेता है। उसका ऐसा जन्म होना इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने पर क्या होता है? वहाँ उसको पूर्व जन्म कृत साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर वह तत्परता से सिद्धि के लिए यत्न करता है। आपने योगियों के कुल में जन्म लेने वाले की बात तो बता दी, पर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है? भोगों के परवश होते हुए भी पूर्वाभ्यास के कारण
वह भी परमात्म प्राप्ति के मार्ग में खिंच जाता है।
क्यों खिंच जाता है?
जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर वह तो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है।
साधन में खिंच जाने पर क्या होता है?
वह बड़ी तेजी से साधन में लग जाता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ वह साधक परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है उसी क्या महिमा है? वह योगी सकाम तपस्वी ज्ञानी और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम भी योगी हो जाओ। योगियों में भी कोई श्रेष्ठ है?
हाँ,
जो मेरे में तल्लीन हुए अंतकरण से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ।
गीता माधुर्य, लेखक और बोलने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज।